आज के दिवस इस तिथि पर कई घटनाएं जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं वो हुई हैं। इसी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने वसंत रास की लीला की। वैसे जो भगवान श्री कृष्ण की रास लीला है वो शारदीय रास यात्रा कहलाती है, रासलीला कहलाती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के रात्रि पर भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला की थी वृंदावन में, शरद पूर्णिमा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वसंत पूर्णिमा में भी ये रासलीला की थी, चैत्र महीने के पूर्णिमा में। साथ साथ इसी तिथि पर अर्थात चैत्र महीने के पूर्णिमा के दिवस पर बलराम जी ने भी रासलीला की थी वृंदावन में। जब भगवान कृष्ण और बलराम दोनों वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, मथुरा कई साल रहे, फिर मथुरा भी छोड़कर द्वारका गए, तो एक बार बलराम जी लौटकर वृंदावन आए। कृष्ण भगवान ने उनको भेजा था कि जाके वो ब्रजवासियों को सांत्वना दे, क्योंकि ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के विरह में बहुत ही दुख की अनुभूति कर रहे थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से निवेदन किया था और बलराम जी वहां गए। बलराम जी वृंदावन में दो महीने रहे, मधु और माधव। वैदिक कैलेंडर में ये दो महीने मधु और माधव जो वसंत ऋतु में आते हैं, उस समय बलराम जी वहां रहे। और श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इस महीने में चैत्र महीने के पूर्णिमा की रात्रि पर बलराम जी ने भी गोपियों के साथ में वहां पर रासलीला की। लेकिन आचार्य वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि जिन गोपियों ने बलराम जी के साथ रासलीला की वो गोपियां, और जो गोपियां जिन गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ रासलीला की ये गोपियां अलग हैं। अब जो बलराम जी के साथ में रासलीला करने के लिए गोपियां आई थीं, वो भगवान कृष्ण के रासलीला के समय बहुत छोटी थी, इसलिए भगवान कृष्ण के रासलीला में भाग नहीं ले पाई। और जब भगवान श्री कृष्ण ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था, तो उस समय होली के दिवस जो बलराम जी ने रास यात्रा की थी, रासलीला की थी, वो गोपियां अलग थीं। तो इसे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान की गोपियां और बलराम जी की गोपियां दोनों अलग अलग हैं। वैसे कृष्ण भगवान के साथ में जिन गोपियों ने रासलीला की थी वो बलराम जी के सामने आने के लिए थोड़ी शर्माती थीं, क्योंकि बलराम जी बड़े भाई कृष्ण भगवान के थे। इसलिए जो गोपियां थीं कृष्ण भगवान की गोपियां, बलराम जी के सामने आने के लिए थोड़े हिचकिचाती थी, तो वो कैसे बलराम जी के साथ रासलीला भला कर सकती थी। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये एक अलग दल था गोपियों का। बलराम जी जब वहां आए तो सारे ब्रजवासी कृष्ण की विरह में दुख व्यक्त कर रहे थे और बलराम जी से पूछ रहे थे कि क्या कृष्ण हम सबको याद करते हैं, माता यशोदा को, नंद महाराज को, क्या वो याद करते हैं, कि क्या अभी द्वारका के आनंद में सब हम सबको भूल गए हैं, हम अभी तक याद करते हैं किस तरह से कृष्ण भगवान हमारे साथ बात करते थे, हमारे साथ हंसते खेलते थे, पर खैर अभी वो हमें याद नहीं करते हैं तो हम उसे क्यों याद करें। फिर ऐसे रूट कर फिर से वो कृष्ण को भूलने का प्रयास करते लेकिन नहीं भूल पाते। फिर बलराम जी ने कृष्ण भगवान का संदेश उन तक पहुंचाया और उनको सांत्वना दी। और फिर बलराम जी अपने गोपियों के संग में गए यमुना के तट पर, क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि थी तो चंद्रमा के किरणें जो हैं यमुना जी को और यमुना के तट पे जो वन था उसको बहुत सुंदर बना रहे थे। और कौमुदी नाम के जो कमल हैं, जो खास करके चंद्रमा की किरणों में खिल जाते हैं, यमुना जी में ये सारे सुंदर फूल थे और सुंदर पवन भी बह रहा था। ऐसे वातावरण में बलराम जी ने इन गोपियों के साथ में रासलीला की। और उस समय वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को भेजा। जिस प्रकार वरुण देव समुद्र के अधिष्ठाता देव हैं, उनकी पुत्री वारुणी नाना प्रकार के दिव्य मदिरा पानों का की देवी हैं, लेकिन ये मदिरा पान इस पृथ्वी के मदिरा पान के बराबर नहीं है। और वरुण देव ने ये सारे वारुणी जो है ये वृक्षों के अंदर प्रदान किया और फिर वृक्षों से बाहर बहने लगा, और ये शहद के समान होता है। तो बलराम जी को जब इसका सुगंध आया तो तुरंत वहां पर गए और गोपियों के संग में इस वारुणी का पान करने लगे, सेवन करने लगे, और रासलीला और आरंभ हुई। और फिर बलराम जी वहां पर बैठ के जल क्रीड़ा करने की इच्छुक थे, उस समय उन्होंने यमुना जी को बुलाया। यमुना जी को जब उन्होंने बुलाया तो उस समय यमुना जी ने सोचा कि ये तो बड़े मदिरा पान पीकर अवस्था में हैं, इसलिए अभी उनकी बात सुनना उचित नहीं है। उस समय बलराम जी को क्रोध आया। बलराम जी ने अपना हल का अग्रभाग लिया और यमुना जी को खींच लिया। यमुना जी को हजारों हजारों छोटे छोटे नदियों में विभाजित किया। और उस समय यमुना जी बड़े घबरा कर बलराम जी के पास आई, हाथ जोड़कर त्राही त्राही कहकर कि मेरी रक्षा कीजिए, मैंने आपके शक्ति को पहचाना नहीं, मैंने आपको गलत समझा। और उस समय यमुना जी ने भगवान बलराम जी को अपने जल में क्रीड़ा करने के लिए निमंत्रण किया। यमुना के जल से लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, उन्होंने भी बलराम जी को कई आभूषण दिए, जैसे एक सोने का हार था, उनको कानों में डालने एक कान में डालने के लिए रत्नों से सुशोभित एक कुंडल था, और बलराम जी नीले रंग के वस्त्र भी पहन रहे थे, वैजयंती माला जो कि कृष्ण भगवान पहनते हैं वो भी पहने हुए थे। और इस प्रकार से बलराम जी ने अपने गोपियों के साथ में इस चैत्र पूर्णिमा के रात पर बहुत दिव्य आनंद लिया। इसी रात को इसी तिथि पर यह हुआ है। और एक जो घटना इस दिवस पर घटी वो है वंशीवर्धन ठाकुर इनका आविर्भाव दिवस। ये भगवान कृष्ण के और चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे। इनका नाम वंशीवर्धन है, कभी कभी वंशी या वंशीदास के नाम से भी जाने जाते हैं। वैसे ये कृष्ण भगवान के मुरली के अवतार माने जाते हैं। जो भी भगवान श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु के पार्षद होते हैं वो किसी न किसी तरह से भगवान की लीला में उनके धाम में भाग लेते हैं। और वंशीवर्धन दास ठाकुर भगवान श्री कृष्ण की लीला में बहुत सुंदर ढंग से भाग लेते हैं वंशी के रूप में, तो भगवान के बहुत निकट रहते हैं। वंशीवर्धन ठाकुर के पिता का नाम था माधव दास। माधव दास के दो भाई थे, हरिदास और कृष्णदास। उनके पिताजी अर्थात माधवदास, कृष्णदास और हरिदास के पिताजी युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय भगवान श्री कृष्ण के बड़े शुद्ध भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों का नाम ऐसे रखा, माधवदास, कृष्णदास और हरिदास। और जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था और 5 साल बीत चुके थे और उनके मन में इच्छा हुई कि वो लौट कर नवद्वीप में जाएंगे, गंगा जी का दर्शन करेंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे और अपनी माता सची देवी से का दर्शन भी करेंगे, तो उस समय लौटते वक्त, नवद्वीप लौटते वक्त वो फिर से माधवदास के घर में आए थे, पूरे 7 दिन वहां पर रहे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी माधवदास या वंशीवदन दास ठाकुर का वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन चैतन्य चंद्रोदय में कवि कर्णपुर इस बात का वर्णन करते हैं कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु 7 दिन माधवदास के घर में रहे। माधवदास की पत्नी का नाम था चंद्रकला देवी, और उन 7 दिनों में जबकि चैतन्य महाप्रभु वहां रहे, उस समय वंशीवदन दास ठाकुर का आविर्भाव हुआ। इसलिए कितने भाग्यशाली थे वो कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में, मतलब जब वो उनके घर में रहा करते थे, उसी समय उनका जन्म हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको, उनके ऊपर असीम कृपा प्रदान कर दी और वंशीवदन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव के बाद जानवा देवी के साथ में रहे, जो कि नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी। और चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव के बाद में वैसे जानवा देवी ही सारे वैष्णवों की प्रमुख बन गई, सबसे वरिष्ठ वैष्णवी वही थी और वंशीवदन ठाकुर उनके यहां सेवा करते थे। और जानवा देवी के तिरुभाव के पश्चात वंशीवदन ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का विग्रह लिया, जो कि जानवा देवी के पास था, और वो नवद्वीप में ले गए, कोलद्वीप। कोलद्वीप जो आज आधुनिक काल में नवद्वीप नाम के शहर से जाना जाता है। आप में से जो मायापुर गए हैं, आपने देखा होगा कि गंगा जी के एक ओर है मायापुर और नदी पार करने के बाद तुरंत नवद्वीप शहर आता है, उस इलाके को कोलद्वीप कहते हैं। नवद्वीप मतलब 9 द्वीप, अंतरद्वीप, गुद्रुम द्वीप, कोलद्वीप इत्यादि। तो नवद्वीप तो बहुत बड़ा क्षेत्र है और आज जो नवद्वीप शहर के नाम से जाना जाता है वो तो बहुत छोटा हिस्सा है। तो आज जो यहां नवद्वीप है वो वास्तव में कोलद्वीप था। तो यहां पर वंशीवदन ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के विग्रह का की स्थापना की और एक कृष्ण मूर्ति प्राण वल्लभ, इनकी भी स्थापना इन्होंने की। इस प्रकार से आज भी वंशीवदन दास ठाकुर इनका आविर्भाव दिवस है। और एक महान वैष्णव आचार्य का आविर्भाव दिवस है और वो है श्यामानंद पंडित, श्यामानंद प्रभु। वैष्णव संप्रदाय में ये बहुत महत्वपूर्ण आचार्य रहे हैं। जब भी श्यामानंद पंडित की या श्यामानंद प्रभु की बात करते हैं तो साथ साथ में नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, इन तीनों का स्मरण आता है एक साथ, क्योंकि ये तीनों ही वृंदावन में श्रील जीव गोस्वामी के साथ में उनके संरक्षण में रहे थे, उनसे श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्र सीखते थे, क्योंकि उनके गुरुओं ने उनको जीव गोस्वामी के बाद शिक्षण के लिए भेजा था। नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु थे लोकनाथ गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य के गुरु थे गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्यामानंद पंडित के गुरु थे हृदय चैतन्य दास। श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव वैसे उत्कल में हुआ, धीरेन्द्र बहादुरपुर शहर में। उनके पिता का नाम था श्री कृष्ण मंडल, वो भी भगवान कृष्ण के बड़े शुद्ध भक्त थे और चैत्र पूर्णिमा की तिथि पर श्यामानंद प्रभु वहां प्रकट हुए। इसके पहले श्री कृष्ण मंडल के कई पुत्र और पुत्रियां हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सबका देहांत हो गया था, इसलिए वो बड़े दुखी थे। और जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो श्री कृष्ण मंडल ने इस बच्चे का नाम दुखी रख दिया, क्योंकि वो इतने दुखी थे, इतने सारे पुत्र पुत्री उनके इनका देहांत हो गया था। तो ये लड़का दुखी जैसे बड़ा होता गया, अन्नप्राशन संस्कार हुए और कई संस्कार हुए और फिर पाठशाला में भर्ती कर दी कृष्ण मंडल ने उनको। और जब भी अध्यापकों ने देखा आश्चर्यचकित रह गए, इतनी तेज बुद्धि, इतनी अद्भुत स्मृति शक्ति और कितनी जल्दी से हर चीज को समझ पाते थे, सीख सकते थे। बहुत ही जल्दी उन्होंने संस्कृत भाषा सीख ली, व्याकरण, न्याय, काव्य इत्यादि। और साथ साथ में जो वहां लोग रहा करते थे कृष्ण भक्त, उनसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में उन्होंने सुना और उनके मन में तीव्र इच्छा हुई बचपन से ही कि उनको भी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के आंदोलन में भाग लेना है, उनको उनके शरण में जाना है। और जब ये गौर नित्यानंद के चरणों के प्रति आकर्षण जो कि दुखी के हृदय में था वो कृष्ण मंडल ने देखा, तो उन्होंने ये तय किया कि अभी समय आ गया है कि मेरे बच्चे को अभी दीक्षा लेनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाना चाहिए। जब ये प्रस्ताव श्री कृष्ण मंडल ने रखा दुखी के पास में, तो दुखी ने कहा कि मेरे गुरु का नाम है हृदय चैतन्य प्रभु, मैंने ठान लिया है कि मैं उनसे दीक्षा लूंगा, और हृदय चैतन्य प्रभु के गुरु हैं गौरीदास पंडित और वो रहते हैं अंबिका कालना में, बंगाल में, तो मैं वहां जाकर उनसे दीक्षा लूंगा। तो कृष्ण मंडल ने कहा कि अरे ये तो बहुत दूर है, इतने दूर अंबिका कालना में कैसे जाओगे? तो दुखी ने जवाब दिया कि थोड़े दिन बाद यहां से कई भक्त गौड़ देश जाने वाले हैं, गंगा जी तक जाने वाले हैं, तो मैं उनके साथ चले जाऊंगा और मैं हृदय चैतन्य प्रभु के पास में जाऊंगा। तो जब भक्त वहां से निकले तो दुखी, जो उस समय बहुत तरुण अवस्था में थे, वो भी उनके साथ निकले और किसी न किसी तरह से चलते चलते वो अंबिका कालना नाम के गांव में पहुंचे। वहां पर ढूंढते ढूंढते वो हृदय चैतन्य प्रभु के निवास स्थान पर आ पहुंचे। वहां पर जैसे ही उन्होंने हृदय चैतन्य प्रभु का दर्शन किया, उनको दंडवत प्रणाम किया और हृदय चैतन्य ने पूछा कि तुम कौन हो? उस समय दुखी ने अपना परिचय दिया, कहा कि मेरा नाम दुखी है, मेरे पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल है और हमारा वंश षड गोपों का वंश है, मेरा जन्म उत्कल में हुआ था और मैं आपके चरणों का आश्रय लेने के लिए यहां पर आया हूं। हृदय चैतन्य प्रभु ने इस बालक का बड़ा सौम्य और सुंदर स्वभाव देखा, उसकी भक्ति भावना देखी, बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा आज से तुम्हारा नाम है कृष्णदास। उस दिन से कृष्णदास वहां पर साथ में रहने लगे हृदय चैतन्य प्रभु के। और वो दिन बहुत करीब आया जब उनके दीक्षा मंत्र का समय आ गया, दीक्षा हो गई, राधा कृष्ण का मंत्र हृदय चैतन्य प्रभु ने कृष्णदास को दे दिया और उनको आदेश दिया कि अब मेरी इच्छा है कि तुम वृंदावन में जाओ, वहां पर जीव गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी के शरण ग्रहण करो और उनसे भागवत और भक्ति सीखो। तो उस समय कृष्णदास ने कहा जैसे आपकी आज्ञा, वो वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन जाते जाते सबसे पहले नवद्वीप गए, नवद्वीप में आकर उन्होंने जगन्नाथ मिश्र का जो पुराना घर था, जहां चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, उस घर में वो वहां गए और वहां पे सची देवी के पुराने सेवक जो अब बहुत वृद्ध हो गए थे, जिनका नाम था ईशान ठाकुर, उन्होंने उनका दर्शन किया। ईशान ठाकुर ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, और जब सुना तो ईशान ठाकुर ने हृदय से उनको आशीर्वाद दिया और फिर आगे चल के वो काशी पहुंचे। काशी में उन्होंने तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य इनका दर्शन किया। चैतन्य लीला में बनारस एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने हजारों की संख्या में मायावादी सन्यासियों को कृष्ण भक्त बना दिया था। और बहुत साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त का स्वरूप भी प्रकट नहीं किया था, जब वो पूर्व बंगाल में गए थे लक्ष्मी संग्रह के लिए, तो उस समय वो तपन मिश्र से मिले थे और उसी समय उन्होंने तपन मिश्र को आदेश दिया था कि आप बनारस में जाके बस जाइए और मैं कई साल बाद में मैं आकर आपसे मिलूंगा। और तपन मिश्रा के लड़के थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो खैर, तपन मिश्र चंद्रशेखर आचार्य से मिले कृष्णदास, उनकी कृपा प्राप्त की, वो भी बड़े प्रसन्न हुए उनको देखकर। आगे चलते चलते मथुरा में आए, मथुरा में विश्राम घाट और अन्य जो भी कृष्ण लीला के स्थली थी उनका दर्शन किया और आगे चल के वृंदावन में पहुंचे। लोगों से पूछताछ की कि जीव गोस्वामी पाद के कुटीर कहां पे है। जीव गोस्वामी के शरण में आए, जीव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए उनको देखकर, पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। तो उस समय कृष्णदास ने बताया, अपना परिचय किया और जीव गोस्वामी को याद आया कि हृदय चैतन्य प्रभु ने एक बार उनसे कहा था कि मेरा एक शिष्य है जिसका नाम है दुखी कृष्णदास, और मैं दुखी कृष्णदास को आपके पास भेजना चाहता हूं, वो आपके शरण में रहकर श्रीमद् भागवत सीखेगा और भक्ति सीखेगा, और जब वो भक्ति में अच्छी तरह से पक्का हो जाएगा तो कृपया फिर वापस उसे मेरे पास बंगाल में भेज दीजिए। तो जीव गोस्वामी ने जब दुखी कृष्णदास को देखा तो बहुत खुश हुए और अपने शरण में उन्होंने स्वीकार किया। उस समय श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर पहले ही आ चुके थे, वो दोनों तो वृंदावन में ही रहते थे और उनके दोनों गुरु महाराज भी वृंदावन में ही रहते थे, लेकिन दुखी कृष्णदास के गुरु हृदय चैतन्य प्रभु ये बंगाल में रहते थे। तो खैर, इन तीनों के बीच में अर्थात श्रीनिवास आचार्य, दुखी कृष्णदास और नरोत्तम दास, बड़ा घनिष्ठ मित्रता हो गई। दोनों हमेशा साथ में रहा करते थे और जीव गोस्वामी से भागवत और अन्य शास्त्र सीखा करते थे और वहां सेवा किया करते थे। दुखी कृष्णदास हमेशा आतुर रहते थे जीव गोस्वामी की व्यक्तिगत सेवा करने के लिए। जब जीव गोस्वामी ने इनका भाव देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, आज से तुम कानन कुंज में जाकर मेरे लिए पानी का घड़ा जो है मटका वो रोज भर के लाया करो। दुखी कृष्णदास ने ये सेवा पाके अनंत बहुत ही सुख की प्राप्ति की और रोज वो कानन कुंज में जाकर पानी का घड़ा भर के लेके आते थे। इस कार्य में उनको इतना आनंद मिलता कि यह आनंद दिन ब दिन बढ़ता जाता। इतने विद्वान थे लेकिन फिर भी ऐसी छोटी सी सेवा, साधारण सी सेवा करने में उनको ज्यादा आनंद आता था। और जब से उन्होंने ये कार्य शुरू किया तब से उनके दूसरे कार्यों में भी, जैसे कि जब वो राधा गोविंद का दर्शन करते, संकीर्तन में भाग लेते, तो उनको बड़े दिव्य आनंद की अनुभूति हो जाती। उनके आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगता और धीरे धीरे से जो सारे अष्ट सात्विक विकार है वो उनके हृदय में प्रकट होने लगे, शुद्ध भक्ति के अवस्था में बहुत तेजी से प्रगति करने लगे। हमें याद रखना चाहिए कि ये सारे जो भी महान आचार्य हुए हैं उस समय, ये सब चैतन्य महाप्रभु के और कृष्ण भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके धाम से आए हैं। तो इसलिए जब हमें ऐसे लगता है कि वो दीक्षा लेते हैं, धीरे धीरे से भक्ति में प्रगति करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किस साधारण एक साधना सिद्ध जीव के समान है। नहीं, पहले से ही ये परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी एक लीला है उनकी। तो खैर, रोज कानन कुंज में जब जाया करते थे, कभी कभी वो एक बहुत सुंदर कन्या को देखा करते थे जो कि एक देवी के बराबर दिखाई पड़ती थी। वो कभी कभी आती थी, जल्दी से चली जाती थी, और दुखी कृष्णदास को कभी पता नहीं चलता था कि ये कौन है, और न ही उन्होंने कभी पूछताछ किया। और एक बार ऐसे हुआ कि जब दुखी कृष्णदास पानी का घड़ा भर रहे थे, तो पानी के नीचे जल में उन्होंने एक कंकण को देखा, सोने का, और उसके साथ में एक छोटा सा कपड़ा था। और उसको देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि यहां किसका कंकण गिर गया है, किसकी चूड़ी यहां पर गिर गई सोने की, और इसका इतना इतनी चमक है, इतना तेज है कि ये कोई साधारण सोना नहीं लगता है। तो उन्होंने ये उठाया, और जैसे ही उठाया तो उस समय कहीं और एक और लीला चल रही थी। श्रीमती राधा रानी ने अपने सखी विशाखा देवी से कहा कि अरे विशाखा, देखो मेरे बाएं चरणों का जो नूपुर है, जो कंकण के रूप में है, वो कहीं गिर गया है, शायद वहां पर कानन कुंज में गिर गया होगा, जाके देख लेना। तो विशाखा देवी वहां पर आई उनके सामने, और उस समय उन्होंने देखा कि दुखी कृष्णदास ये नूपुर लेकर हाथ में खड़े हैं। तो उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। दुखी कृष्णदास ने जब विशाखा देवी का सुंदर रूप देखा, आश्चर्यचकित हो गए। इतना तेज था कि प्राय वो देख नहीं पाए, सूरज के समान। इसका मतलब है कि गोलोक वृंदावन के वैकुंठ के जो रूप होते हैं, वहां के दिव्य सच्चिदानंद शरीर जो होते हैं, इतने प्रकाशमान होते हैं, बल्कि गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ में हर एक वस्तु इतना प्रकाशमान होता है कि हम इन भौतिक आंखों से उसकी रोशनी को सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सीधे हम सूरज को देख नहीं सकते, वो रोशनी को हमारे आंख सहन नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से गोलोक वृंदावन का हर एक कण कण इतना ही प्रकाशमान है। तो दुखी कृष्णदास प्राय विशाखा देवी को देख भी नहीं पाए, और पूछने लगे कि आप कौन हो। कहने लगे, मैं एक गोप की पुत्री हूं, और कहां से आए हो, मैं यहां पास से गांव से आई हूं, और किस लिए यहां पर आए हो, और ये जो नूपुर है किसका है। वो मेरे सहेली का है, और मैं वापस ले जाने के लिए यहां पर आई हूं। लेकिन दुखी कृष्णदास इतने जल्दी से देने वाले नहीं थे, तो बहुत बातचीत उन्होंने की कि कौन है तुम्हारी सहेली, उसका नाम क्या है, वो कहां रहती है, मैं उसे भी देखना चाहता हूं, क्या मेरे पास लेके आओगे। तो विशाखा देवी ने कहा कि ठीक है, मैं लेकर आती हूं। तो वापस राधा रानी के पास गई, और राधा रानी कहा ठीक है, चलो जाते हैं, ये तो मेरे बहुत प्रिय भक्त हैं। तो राधा रानी आई और वृक्ष के पीछे छुपी, और विशाखा देवी ने आकर कहा कि हां आओ देखो, जिसका जो इसके मालिक हैं वो वहां पर वृक्ष के पीछे हैं, लेकिन इसके पहले तुम्हें तुम्हारा रूप बदलना होगा। उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है, आके इस कानन कुंज में स्नान कर लो। जैसे ही दुखी कृष्णदास ने प्रवेश किया उस जल में, तो तुरंत उनका रूप बदल गया, और एक सुंदर प्रकाशमान स्वर्ण रंग की गोपी का रूप, एक तिलक बनाया दुखी कृष्णदास के कपाल में। राधा रानी ने उनको दर्शन दिया, जब देखा तो दंडवत किया दुखी कृष्णदास ने, भाव विभोर हो गए, प्रेमावेश में आकर आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा था। श्रीमती राधा रानी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी सेवा से, और ये तिलक मैंने खास तुम्हारे कपाल में लगाया है ताकि लोग समझें कि तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, और आज से तुम्हारा नाम दुखी कृष्णदास नहीं होगा बल्कि श्यामानंद होगा। क्योंकि राधा रानी का और एक नाम है श्यामा, जैसे कृष्ण का नाम है श्याम तो राधा रानी का नाम है श्यामा, तो तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद, तो जाओ। तो उस समय श्यामानंद अपने समाधि से बाहर आए और उन्हें सारी चीजें याद रही, और जब उन्होंने जल में देखा तो अपने कपाल के ऊपर जो तिलक था उसको देखा, आश्चर्यचकित हो गए, भाव विभोर हो गए, रोते रोते अपने गुरु जीव गोस्वामी के पास गए। जीव गोस्वामी ने पूछा, अरे ये विचित्र तिलक क्या है तुम्हारे कपाल के ऊपर? तो उस समय सारी बातें श्यामानंद, अभी श्यामानंद हो गए थे, उन्होंने सुनाया उनको। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि हाँ ठीक है, ये बात किसी से कहना नहीं कि कैसे तुम्हारे ऊपर ये तिलक आया, और अब से आज से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद, लेकिन ये भी किसी को नहीं बताना कि क्यों तुम्हारा नाम ऐसे बदला गया है। और वैसे जैसे लोगों ने वृंदावन में देखा कि अभी दुखी कृष्णदास का नाम हो गया है श्यामानंद, उनको समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसे नाम का परिवर्तन हुआ है, और ये अद्भुत एक तिलक देखा कपाल के ऊपर और उनको आश्चर्य हुआ, और सभी लोग इसके बारे में बातचीत करने लगे। बात जल्दी से फैल गई, यहां तक कि बात अंबिका कालना बंगाल में पहुंच गई। उस समय हृदय चैतन्य प्रभु ने सुनी ये बात, वो थोड़े विचलित हो गए। उन्होंने सोचा कि जीव गोस्वामी ने पुनः उनको दीक्षा देकर उनका नाम बदल दिया है, जबकि हृदय चैतन्य प्रभु ने उनको दीक्षा दी थी और केवल उनके हवाले शिक्षा के लिए दिया था। तो उन्होंने सोचा, क्या ऐसा हो गया है कि जीव गोस्वामी ने मेरे शिक्षा देने के बावजूद एक दूसरी दीक्षा मेरे ही शिष्य को दे दी है, या तो फिर मेरे शिष्य ने ऐसे नाम अपने आप क्यों बदल दिया है? ऐसे कोई शिष्य को करना उचित नहीं है कि अपना ही नाम बदल दे। तो बड़े विचलित होकर वृंदावन आए और श्यामानंद को उन्होंने बहुत डांटा, बल्कि पीटा भी। और श्यामानंद पंडित ने बड़े नम्रता से उसको स्वीकार किया। उस दिन रात को जब हृदय चैतन्य प्रभु नींद में थे तो श्रीमती राधा रानी स्वयं उनके स्वप्न में आई और उनको डांटने लगी कि तुम नहीं जानते हो कि ये कौन है, इसको बिल्कुल कुछ करना नहीं, बल्कि मेरे ही चरणों का एक अंश समझकर, मेरे ही पार्षद समझकर इसे स्वीकार करना। तो हृदय चैतन्य प्रभु बड़े आश्चर्यचकित हुए, बड़े खुश भी हुए, और जब नींद से जागे तो जाके उन्होंने सीधे श्यामानंद प्रभु का आलिंगन किया और कहा कि मेरा जीवन धन्य हो गया है कि तुम जैसा शिष्य मुझे मिला है। और उसके बाद में उन्होंने समझा कि अभी दुखी कृष्णदास अर्थात श्यामानंद अभी वापस बंगाल में लौटने के लिए तैयार है। तो जीव गोस्वामी बड़े खुशी से उन्होंने अनुमति दे दी और श्यामानंद प्रभु लौटकर अपने गुरु हृदय चैतन्य प्रभु के पास में वापस लौट गए। काफी समय तक अपने गुरु के पास में रहे। वैसे जब लौट रहे थे तीनों, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु, जीव गोस्वामी ने उनको आदेश दिया था कि जाके जो भी षड गोस्वामियों के ग्रंथ हैं उनका वितरण करो बंगाल में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का प्रचार होना चाहिए। और उस समय बिरहंबीर राजा, जो कि डाकुओं के एक राजा थे, बिर विष्णुपुर नाम की जगह में उनके डाकुओं ने ये सारे ग्रंथ चोरी कर लिए, क्योंकि एक ज्योतिष ने कहा था कि तीन साधु आने वाले हैं जिनके पास बहुत धन होने वाला है। तो डाकुओं ने समझाने कि किस प्रकार का धन है, ये सारे वैष्णव ग्रंथ थे, ये तो सबसे बड़ा धन है। लेकिन डाकू भौतिक लोग थे, उन्होंने सोचा कि सोना चांदी हीरे रत्न होंगे, किस तरह के हीरे थे वो नहीं जान पाए, उन्होंने चोरी कर ली। ये बहुत लंबी लीला है, क्योंकि श्रीनिवास आचार्य यहां रहकर फिर उन्होंने वो किताब वापस ले लिए और राजा बिरहंबीर को अपना शिष्य बनाया, वो भी वैष्णव हो गए, लेकिन ये दूसरी कथा है। लेकिन जब ऐसे चोरी हो गई ग्रंथों की, तो आगे श्यामानंद प्रभु अंबिका कालना अपने गुरु के पास चले गए। और जब हृदय चैतन्य ने सुना कि ऐसे ग्रंथ चोरी हो गए हैं और उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन अभी बढ़ नहीं रहा है बल्कि बहुत समस्या आ रही है, तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने शिष्य श्यामानंद प्रभु से कहा कि अभी ये आवश्यक है कि तुम उत्कल देश में जाओ, मतलब ओडिशा, और वहां जाकर चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करो। तो श्यामानंद प्रभु ने अपने गुरु के आदेश को शिरोधारी, मतलब अपने सर पर ग्रहण किया, बड़े दुख से, क्योंकि वो अपने गुरु से दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन गुरु की वाणी गुरु के बपू से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उनका आदेश ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वो आगे उत्कल में चले गए और रोहिणी नाम के एक जगह में उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य से उनकी मुलाकात हुई, जिनका नाम था रसिकानंद। आगे चल के रसिकानंद प्रभु को उन्होंने दीक्षा दे दी, वहां पर कई लोगों को उन्होंने शिष्य बनाया, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार उन्होंने बड़े पैमाने से वहां पर उत्कल में किया और श्यामानंद प्रभु के कार्य को आगे चलाया उनके शिष्य रसिकानंद प्रभु ने। और इस प्रकार से काफी समय तक वो उत्कल में रहे और फिर लौटकर अपने गुरु के पास आ गए। इसलिए श्यामानंद प्रभु का प्रभाव खास करके उत्कल और उड़ीसा में काफी है। आज श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, साथ साथ में आज हनुमान जयंती भी है। कितने महान आत्माओं का आविर्भाव आज है। हनुमान जी के बारे में तो क्या कहना है, भगवान श्री राम के परम भक्त, दास्य रस के आदर्श। जैसे आप जानते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए अलग अलग रस होते हैं, पांच प्रकार के रस, उनमें से एक है दास्य रस। जब दास्य रस की बात करते हैं तो तुरंत स्मरण आता है हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी ने जिस तरह से श्री राम की सेवा की दास्य रस में, वो हमारे लिए अनुसरणीय है। अपने प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। हनुमान जी के जीवन में एक ही इच्छा थी कि कैसे श्री रामचंद्र को प्रसन्न करना है, और इसलिए हनुमान इतने प्रसिद्ध भक्त हैं, इसलिए उनका यश आज तक गूंज रहा है सारे तीनों लोकों में। वैसे जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से वार्तालाप कर रहे थे विद्यानगर में, दक्षिण भारत में, चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कई प्रश्न किए थे और रामानंद राय के मुख के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ही उत्तर दे रहे थे। और उनमें से एक प्रश्न ये था कि सबसे बड़ी प्रसिद्धि क्या है या किसकी है। तो रामानंद राय ने कहा भक्त की, क्योंकि भक्त जितना प्रसिद्ध कोई नहीं हो सकता। और ये वास्तव में सत्य है, कितने बड़े राजा महाराजा हुए हैं आज तक, लेकिन कौन उनको याद करता है। लेकिन भगवान के भक्त हुए हैं जैसे प्रहलाद, ध्रुव, हजारों करोड़ों साल बीत गए लेकिन बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। उसी प्रकार से हनुमान जी का नाम कितना प्रसिद्ध है, कौन है जो हनुमान जी का नाम नहीं जानता है। बच्चा बच्चा गली गली में, यहां तक कि भारत के बाहर भी हनुमान जी प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी का जो यश है, उनकी प्रसिद्धि है, वो इसलिए है कि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भगवान के भक्तों को वो सारे ऐश्वर्य मिल जाते हैं जो कि भगवान के पास है। भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है और षड ऐश्वर्यों में से एक है यश, प्रसिद्धि। और भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने प्रसन्न होते हैं कि उनको भी ये सारे ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। आज के दिवस हनुमान जी भी किष्किंधा नगरी में प्रकट हुए थे। प्रभु रामचंद्र जी को भी पता नहीं था कि हनुमान जी का प्राकट्य कैसे हुआ है। तो वाल्मीकि जी उत्तरकांड, रामायण के उत्तरकांड में वर्णन करते हैं, हुआ यह कि जब प्रभु रामचंद्र रावण का वध करके लौटकर अयोध्या में आए तो उनका राज्यभिषेक हुआ, राजगद्दी उन्होंने संभाली, और एक बार बहुत सारे ऋषि मुनि उनके दरबार में आए, सप्त ऋषि भी आए और साथ साथ में अगस्त ऋषि भी आए। और उस समय अगस्त ऋषि ने प्रभु रामचंद्र जी के कई प्रश्नों का उत्तर दिया और बातचीत के दौरान उन्होंने वाली और रावण की भी चर्चा की और यह बताया कि वाली और रावण कितने शक्तिशाली थे। काफी लंबी बातचीत चल रही थी जब वाली और रावण का प्रसंग आया, तो वाली और रावण की शक्ति के बारे में सुनकर प्रभु रामचंद्र जी के मन में एक संशय आया और उन्होंने अगस्त्य मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे मन में यह संशय है कि जब वाली और सुग्रीव की शत्रुता चल रही थी तो उस समय हनुमान जी ने सुग्रीव का साथ क्यों नहीं दिया, अर्थात उन्होंने वाली की हत्या या क्यों नहीं किया, वाली को हराया क्यों नहीं, भगाया क्यों नहीं, जबकि वाली के हाथों में सुग्रीव को इतना कुछ कष्ट सहन करना पड़ा, इतना अपमान सहन करना पड़ा। वैसे हनुमान की शक्ति तो मेरे अनुमान से असीमित है, केवल हनुमान की सहायता की वजह से मैं लंका का युद्ध जीत पाया और मैं रावण का वध कर पाया। तो हनुमान जी की शक्ति इतनी है कि मैं समझता हूं कि अगर हनुमान जी ने वाली को पराजित नहीं किया उस समय तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं हुआ होगा, इसलिए उन्होंने नहीं किया। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है, कृपया समझाइए। तो अगस्त ऋषि ने हनुमान जी का इतिहास बताया, कहा कि सुनो ध्यान से। और इस समय उस भरी सभा में हनुमान जी भी स्वयं बैठे थे और उन्होंने श्री रामचंद्र के इन प्रश्नों को सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा, दिव्य आनंद की अनुभूति उन्होंने की, आनंद के सागर में डूब गए। जब प्रभु अपने भक्त की प्रशंसा करते हैं तो भक्त को लगता है कि मैं तो योग्य नहीं हूं, लेकिन भगवान के भाव को देखकर भक्त बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। फिर अगस्त्य मुनि कहने लगे कि वैसे किष्किंधा में एक वानरी रहती थी जिनका नाम था अंजना, उनके पति थे वानर के प्रमुख केसरी जो कि मेरु पर्वत के ऊपर रहते थे, लेकिन अंजने के गर्भ में वायु देवी के माध्यम से एक शिवजी का पुत्र हुआ और यह पुत्र क्योंकि वायु पुत्र था तो बहुत शक्तिशाली था। जैसे ही जन्म हुआ तो एक बार माता अंजना ने उस पुत्र को वहीं पर रखा और पुत्र के लिए थोड़े फल इत्यादि जंगल से ढूंढ ले आने के लिए वहां से गई। उस समय उस बच्चे को बहुत भूख लग गई, उसने सोचा कि मुझे कुछ फल खाने हैं, क्योंकि वानर रूप में जन्म हुआ था तो फल खाना बड़ा पसंद था उनको। उन्होंने देखा कि पास में कोई फल नहीं है और ठीक उसी समय सूर्योदय होने लगा और जैसे उन्होंने सूरज को देखा सोचा कि अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा फल लग रहा है, कोई संतरा है, सेब है, कैसा फल है, बड़ा सुंदर लग रहा है, स्वादिष्ट लगता है ये फल। तो तुरंत उस बालक ने छलांग लगाई सूरज की ओर उसको एक फल समझकर, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। जैसे छलांग लगाया सारे देवी देवतागण इस दृश्य को देखकर चकाचौंध रह गए कि अरे ये बालक इतने तेज गति से उड़ रहा है, ये मन की गति से या गरुड़ की गति से चल रहा है, आज तक हमने इस गति से चलने वाले किसी को नहीं देखा है सिवाय गरुड़ और मन। सूर्य देव ने देखा कि ये तो बहुत तेजी से मेरी ओर आ रहा है बच्चा, लेकिन सूर्य देव ने सोचा ये तो बच्चा है, ठीक है, इसे जलाना नहीं चाहिए। सूर्य देव ने उसको जलाया नहीं, साथ साथ वायुदेव भी उनके संरक्षण के लिए उनके साथ साथ में चल रहे थे बच्चे के, और उधर सूर्यदेव को यह भी मालूम था कि आगे चल के ये बच्चा प्रभु रामचंद्र जी की लीला में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, इसलिए सूर्यदेव ने कुछ किया नहीं और सीधे वो बालक जाके सूर्यदेव के साथ में उनके रथ के ऊपर साथ में बैठ गया। मतलब सूर्यदेव की अग्नि ने उनको बिल्कुल छुआ तक नहीं, कुछ हुआ नहीं उनको, क्योंकि सूर्यदेव ने उनको क्षमा कर दी। और जब वो बैठ गए तो ऐसे हुआ कि उस समय राहु का समय था ग्रहण करने के लिए, तो राहु सूर्यदेव के पास आया। और जैसे ही आया तो बच्चा था, अब जानते कि बच्चे होते जो भी उनके सामने लाया जाता है उसको हाथ लगाकर वो छीनना चाहते हैं। तो इस बच्चे ने देखा कि कौन आया है, तुरंत छलांग मारी राहु के ऊपर, राहु घबरा गए और वहां से तुरंत भाग पड़े। राहु आए थे खाने के लिए सूर्यदेव को, मतलब ग्रहण करने के लिए, और जब इस बच्चे ने आक्रमण किया और इतने गति से, तेज गति से, शक्ति से बच्चा आ रहा था कि राहु वहां से तुरंत भाग गया और इंद्रदेव के पास गया और शिकायत करने लगा, कहने लगा कि अरे इस ब्रह्मांड में कितने राहु हैं, मैंने सोचा कि सूर्य और चंद्र इनका ग्रहण करना, जब मुझे भूख लगता है तो इनके ऊपर आक्रमण करना ये केवल मेरा अधिकार है, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि कोई दूसरा नकली राहु आ गया और जब मैं सूर्यदेव के पास गया तो मेरे ऊपर उसने आक्रमण किया। तो इंद्रदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे दूसरा राहु, वे भी मेरे जानकारी के बाहर, कौन है ये? तुरंत अपने हाथी वाहन ऐरावत के ऊपर बैठकर सवार हो गए, चलो सूर्यदेव की ओर। और जैसे सूर्यदेव के पास आए तो उस बच्चे ने देखा कि अरे ये घोड़ा, ये हाथी है, हाथी पहचाना नहीं, कभी हाथी जीवन में देखा नहीं था, सोचा कि ये सुंदर एक सफेद रंग का फल होगा, तो तुरंत आक्रमण किया। बड़ी भूख लगी थी, अभी तक खाए नहीं था कुछ, केवल सूर्यदेव के पास बैठे थे लेकिन सूर्यदेव ने खिलाया नहीं था कुछ, तो इतने भूख लग गई थी कि ऐरावत के ऊपर आक्रमण किया। जैसे राहु को उन्होंने एक फल समझा था, उसी प्रकार से ऐरावत को भी एक फल समझा। और इंद्रदेव ने देखा कि अरे अरे आक्रमण कर रहा मेरे ऊपर, तुरंत अपना वज्रास्त्र उन्होंने फेंक दिया। हनुमान जी को यहां हनु पे वहां लग गया, और जैसे ही लगा उसका प्रभाव इतना पड़ा वज्रास्त्र का कि बेहोश होकर वो बच्चा नीचे गिर गया। नीचे गिरकर टकरा गया एक पहाड़ से, और यहां पर उसका हनु जो है वो थोड़ा कट गया और उसका देहांत हो गया। जैसे प्राण शरीर से निकल गया तो वायुदेव ये सब देख रहे थे, उनके पुत्र के देहांत को देखकर वायुदेव बहुत दुखी हुए। वायुदेव ने क्रोधित होकर उस बच्चे को अपने गोदी में लिया और एक गुफे में जाकर शांत बैठ गए, शोक कर रहे थे, बहुत शोक कर रहे थे। और जब वायुदेव गुस्सा हो जाते हैं तो क्या करते हैं, सारा प्राण खींच लेते हैं। तो सभी लोग सारे ब्रह्मांड भर में, खास करके देवतागण भी अनुभव करने लगे कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं और हमारे शरीर में कोई वायु नहीं हिल रही है, कोई प्राण नहीं है, तो बहुत तकलीफ होने लगी। तो सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि क्या बात है, हम लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, क्या समस्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने वायु पुत्र के प्रति आक्रमण किया, इसलिए वायु बड़े नाराज हैं, और जब वायु वो कहीं से खींच लेते हैं तो फिर व्यक्ति जो है वो लकड़ी के टुकड़े के बराबर बन जाता है, क्योंकि शरीर में जब वायु नहीं होता, प्राण नहीं होता, तो वो शरीर की क्या कीमत है, ये केवल लकड़ी या पत्थर के बराबर है। तो अगर हमें सबको जाकर वायुदेव को पहले सांत्वना देनी चाहिए, उनको शांत करना चाहिए, फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो उस समय सारे देवता वहां पर आए, जैसे ब्रह्मा जी को वायुदेव ने देखा तो प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ उस बच्चे के सर के ऊपर रख दिया और तुरंत बच्चा जीवित हो गया फिर से। और फिर ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं से कहा कि अभी आप सब इस बच्चे को आशीर्वाद दे दो। तो उस समय इंद्रदेव ने अपने गले से जो कमल की माला है वो उतारी और उस बच्चे के गले में लगा दी और कहा कि मैं इसे यह आशीर्वाद देता हूं कि मेरा वज्र जो है अस्त्र कभी भी इसको छू नहीं पाएगा। कभी उसको मार नहीं पाएगा, कभी चोट नहीं पहुंचा पाएगा मेरा अस्त्र। साथ साथ में वहां पे सूर्य देव थे, सूर्य देव ने आशीर्वाद दिया कि मैं इसे यह आशीर्वाद देता हूं कि मेरे 1% तेज इसे मिल जाएगा। अब सूर्यदेव का तेज कितना है, उसका 1% भी कहें तो कितना है, बहुत ज्यादा है 1%। तो हनुमान जी को सूर्यदेव का 1% तेज आ गया और कहा कि साथ साथ मैं भी ये भी इसे वरदान देता हूं कि यह शास्त्रों में बहुत निपुण और विद्वान हो जाएगा और साथ साथ इसको वाक सिद्धि मिल जाएगी। वाक सिद्धि मतलब जो भी बोलेगा इतना मधुर और मीठा होगा कि सभी लोग उसके बोली से प्रभावित हो जाएंगे। और आगे चल के विश्वकर्म ने कहा कि मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि जो भी अस्त्र शस्त्र आज सारे ब्रह्मांड में मेरे द्वारा बने हैं वो कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे इस बच्चे को। शिवजी ने कहा मेरे अस्त्रों से कभी भी इसकी मृत्यु नहीं होगी। यमराज ने कहा कि मेरे यम दंड से हमेशा ये मुक्त रहेगा। कुबेर ने कहा यह कभी भी युद्ध में थकेगा नहीं और कोई उसको युद्ध में मार नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी ने अंत में कहा मैं इसे वरदान देता हूं कि ये चिरंजीवी रहेगा, बहुत लंबी आयु इसकी होगी, उदार हृदय का रहेगा और ब्राह्मणों का शाप, मृत्युदंड, मृत्यु का शाप इसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। और फिर वायुदेव की ओर देखकर बोलने लगे कि ये लड़का, ये बच्चा जो है, मैं इसे वरदान देता हूं कि वो इस सारे ब्रह्मांड में जहां चाहे वहां जा पाएगा, किसी भी गति में जा पाएगा, किसी भी प्रकार से जा पाएगा और किसी भी रूप को धारण करके जा पाएगा। काम रूपिणम, मतलब जैसे उसकी इच्छा हो वैसे रूप धारण कर पाएगा, ये मैं वरदान देता हूं। और इंद्रदेव ने फिर उस बच्चे को नाम रखा, क्योंकि उसका हनु जो है वो कट गया है इसलिए उसका नाम मैं हनुमत रखता हूं या हनुमान, इसलिए बच्चे का नाम हो गया हनुमान। तो इतने सारे देवताओं से वरदान प्राप्त करने के बाद में स्वाभाविक है कि बच्चे में इतनी शक्ति आ गई हनुमान में कि बहुत सारे शरारतें करना लगा, जैसे कि साधारण बच्चे भी करते हैं। लेकिन साधारण बच्चे ज्यादा कोई हानि हंगामा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी शक्ति कितनी होती है। लेकिन ये बालक हनुमान की शक्ति इतनी अद्भुत थी और जब बालक हनुमान शरारत करना उन्होंने शुरू किया तो सब जगह हंगामा मच गया। नदी के तट में जाकर सारे ऋषि मुनियों को वो हैरान करने लगे। जो भी उनके पूजा की सामग्री थी वो इधर उधर कर देते, सारे ऋषि मुनि बड़े हैरान हो जाते। लेकिन उनको याद था कि ब्रह्मा जी का वरदान है, ये मारा नहीं जा सकता। और वैसे भी सोचे मारेंगे हम क्यों, आखिर ये भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए आया है और भगवान का साथ देने वाला है दुष्टों का नाश करने के लिए। लेकिन फिर भी हमारी तपस्या में, हमारे क्रियाओं में ये इतना हमें हैरान कर रहा है कि कोई ना कोई शाप तो अवश्य हमें देना होगा। फिर जब बात हद से बाहर बढ़ गई तो ऋषि मुनियों ने शाप दिया उस बच्चे को, हनुमान को, कि तुम्हारी शक्ति इतनी ज्यादा है कि तुम इसका दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम तुम्हारी शक्ति को भूल जाओगे कि मेरे पास इतनी शक्ति है, और केवल जब वास्तव में आवश्यकता पड़ेगी, जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा, उस समय तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण आएगा और इस शक्ति का उपयोग तुम उस समय कर पाओगे। तो इस तरह से हनुमान जी उस समय अपनी शक्ति को भूल गए और बिल्कुल शांत हो गए, जो पहले इतने शरारती थे अब शांत हो गए और अपनी सारी शक्ति जो है वो विद्या प्राप्त करने में उन्होंने लगा दी। और उनके गुरु कौन थे, सूर्यदेव। तो क्या करते थे, प्रातः काल में पाठशाला जाना पड़ता है तो पाठशाला कहां, सूर्यदेव है, तो सीधे छलांग मारते सूर्यदेव की ओर और सूर्यदेव सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जब सूर्य का चक्र हुआ करता था, तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक हनुमान जी सूर्यदेव के साथ में रहते और पूरे 12 घंटे जब भी सूरज ऊपर चक्र करता रहता था तो हनुमान जी नाना प्रकार के प्रश्न करते सूर्यदेव से और सूर्यदेव उत्तर देते और ऐसे हनुमान जी विद्वान बन गए, बृहस्पति जितना विद्वान बन गए। आप जानते हैं कि विवस्वान भी बड़े आचार्य हैं। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राहुर मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवत गीता के 4th अध्याय में भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, ये गीता का ज्ञान मैंने बहुत पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, उन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और इस तरह से राज ऋषियों की परंपरा शुरू हो गई। तो विवस्वान सूर्यदेव भी बड़े विद्वान थे, इसलिए वो हनुमान जी के शास्त्रों के गुरु बने और इस प्रकार से हनुमान बहुत विद्वान हो गए। और फिर अगस्त्य मुनि आगे प्रभु रामचंद्र जी को बताने लगे कि इसलिए जब वाली और सुग्रीव के बीच में झगड़ा हुआ तो हनुमान जी वाली को हरा नहीं सके, क्योंकि वो अपनी स्वयं अपनी शक्ति को जानते नहीं थे कि क्या है। लेकिन जब वास्तव में जांबवान ने उनको याद दिलाया, जब लंका की ओर कूद कर जाना पड़ा, उनको समुद्र पार करना पड़ा, जब संपाति जो कि जटायु के रिश्तेदार थे उन्होंने उनको याद दिलाया कि बताया कि देखो मैं देख सकता हूं 100 योजन दूर लंका में सीता देवी बैठी हैं अशोक वाटिका में, तो वहां पर जाके सीता देवी को कोई ले आओ। संपाति ने कहा मैं तो वृद्ध हो गया हूं, मेरी दृष्टि कमजोर हो गई, फिर भी मैं देख पा रहा हूं 100 योजन दूर, मतलब 800 मील दूर। ये होती है उनकी दृष्टि, बुढ़ापे में भी ये दृष्टि, तो जवानी में कितनी हुई होगी। तो संपाति ने जब ऐसी दृष्टि देखा सीता देवी को, बाकी कोई भी वानर नहीं कूद पाए। किसी ने कहा कि मैं 10 योजन कूद सकूंगा, किसी ने कहा मैं 20 योजन, किसी ने 40, 60, 70, 80। जांबवान ने कहा मेरी युवा अवस्था में मैंने सारे पृथ्वी को 3 बार घेर लिया था, चक्कर मार लिया था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा 90 योजना कूद सकता हूं। अंगद वाली के पुत्र, उन्होंने कहा मैं तो 100 योजन दूर कूद सकता हूं, मैं पहुंच तो पाऊंगा लंका, लेकिन वापस आने की शक्ति मेरे अंदर नहीं होगी। तो फिर सभी लोग हनुमान की ओर देखने लगे। हनुमान अभी तक बोले नहीं थे, क्योंकि हनुमान को मालूम ही नहीं था कि मैं कूद सकता हूं। फिर जांबवान ने उनको याद दिलाया कि अरे हनुमान, तुम नहीं जानते तुम्हारी शक्ति कितनी है, बचपन में तुम्हें एक शाप मिला था इसलिए तुम अपने शक्ति को भूल गए, लेकिन अभी याद करो तुम कौन हो, तुम श्री राम के विशेष सेवक और भक्त हो और तुम्हारी शक्ति भी अद्भुत और विशेष है, तो शक्ति का आह्वान करो और चलो जाओ, लंका जाओ और सीता देवी को लेकर आओ। तब हनुमान जी को पता चला अरे मेरी शक्ति, हाँ वाकई मेरी शक्ति बहुत है। फिर उनका शरीर विशाल होता गया, पहाड़ हिमालय से भी ज्यादा बड़ा, गगनचुंबी शरीर हो गया उनका, और फिर जोर जोर से अपने नए पाए हुए शक्ति के उल्लास में गरजने लगे, सारा ब्रह्मांड मानो कांपने लगा। फिर उन्होंने कूद मारी, छलांग मारी और फिर वो कथा तो आप जानते हैं, सारे समुद्र को पार करके पहुंच गए हनुमान जी लंका। तो वाकई अगस्त मुनि कहने लगे कि अगर उस समय हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण होता तो निश्चित रूप से वाली को मार सकते थे। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा हनुमान जी के बारे में कि केवल हनुमान की वजह से मेरा विजय हुआ है, मतलब भगवान रामचंद्र हनुमान को सारा श्रेय देना चाहते हैं। जब महाभारत में ये लीला देखते हैं कि भीमसेन की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी, जब हनुमान जी रास्ते में पड़े थे और उन्होंने ललकारा, भीमसेन पहचान नहीं पाए थे, तो अंत में हनुमान जी ने कहा था भीमसेन से कि भीम, अगर मैं चाहता तो अकेले रावण की हत्या आसानी से कर सकता था और सारे लंका का विध्वंस एक क्षण में कर सकता था, मेरी यह शक्ति है, लेकिन अगर मैं ऐसे करता तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र का यश बढ़ता कैसे, उनका गुणगान कैसे लोग करते, उनका गौरव कैसे बढ़ता, तो देखिए, भक्त भगवान का श्रेय को श्रेय देना चाहते हैं, भगवान का गुणगान